हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने बात की थी कि भगवद गीता का महत्व क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि भगवद गीता क्यों और कैसे पढ़नी और समझनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई सवाल पूछे कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, तो इसका उत्तर है आनंदमयो भ्यासा, कि हम लोग आनंद की खोज में है, है ना। हम सब लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन है, हम लोग सुख क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? हम लोग सुख इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम जिनके अंश हैं वो सुख के सागर हैं और वो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। वो हमेशा ऐसी क्रियाएं करते हैं जो आनंद प्रदान करने वाली हैं। अब वो जो क्रियाएं हैं, वो जो एक्टिविटीज हैं, वो भौतिक जगत में दिखने को नहीं मिलती, इसलिए हम लोग हमेशा खोज में रहते हैं कि कैसे हम सुख को, आनंद को प्राप्त कर सके, है ना। तो ये कारण है। कृष्णा आनंद के सागर हैं, लेकिन अभी हमारा कांटेक्ट नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम तो कृष्ण को भगवान मानते हैं। कृष्ण को भगवान मानना और उस बात के ऊपर अमल करने में दोनों में फर्क है, नहीं? सो क्या इस भौतिक जगत में अभी हम सुख नहीं पा रहे हैं क्या? तो हम लोग इस भौतिक जगत में अभी भी सुख पा रहे हैं, है ना। कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सुख है। तो तीन तरह का सुख है इस भौतिक जगत में, है ना। एक सुख है जो सतोगुण से उत्पन्न है, एक सुख है जो रजोगुण से उत्पन्न है, और एक सुख है वो तमोगुण से उत्पन्न है। तो भगवद गीता में कृष्ण बता रहे हैं कि जो सुख शुरू में कड़वा लगे लेकिन बाद में मीठा लगे, वो सत्व गुण में स्थित सुख है, है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो कितना अच्छा लगता है, नहीं? कुछ सब चारों तरफ शांति होती है। आप सुबह उठ के नहा धो के अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। और आप देखो, सुबह दिन में अगर किसी काम को करने में एक घंटा लग रहा है, सुबह सुबह वही काम 15 मिनट में, आधे घंटे में निपट जाएगा, है ना। आप सैर के लिए जा सकते हो सुबह उठ के, है ना। लेकिन उठने में तकलीफ है, लेकिन एक बार उठ गए तो सब अच्छा है, है ना। जो रजोगुण में सुख है, कृष्णा कह रहे हैं कि रजोगुण में सुख हुआ है कि शुरू में अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में दिक्कत देगा वो, है ना। शुरू में जब हम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसका जो परिणाम है वो विष के समान है, उसका परिणाम वो रजोगुण से उत्पन्न सुख है, है ना। जैसे हम कोई बहुत ही रिच, बहुत हैवी खाना खा लें, तो जब खा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में एकदम बड़ा हैवीनेस लगती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं, है ना। या हम कोई बहुत तीखा खाना खा लें तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मुंह जलता है, पेट में भी जलन का एहसास होता है, ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न सुख है। अभी अच्छा लग रहा है जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम विष के समान होगा उसमें। और जो तमोगुण से उत्पन्न सुख है वो क्या है, वो जब हम करते हैं तो भी विष के समान है, और उसका जो परिणाम है करने के बाद उसका परिणाम भी विष के समान है, है ना। वो तमोगुण से उत्पन्न सुख है। जैसे अगर कोई ड्रिंक करता है, है ना, और कड़वी सी होती है, वो ड्रिंक कर लिया, बड़ी मुश्किल से उसको अंदर पहुंचाया, और उसके बाद दिमाग से कंट्रोल छूट जाता है। एक बार मैं अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था कहीं पर कुछ प्रोग्राम के लिए, मेरे पास मृदंग भी मैंने पीछे टांगा हुआ था, तो मेरे आगे एक बुजुर्ग सज्जन चल रहे थे, शायद होली का दिन था या होली से एक आध दिन पहले का दिन था, तो वो चलते चलते धड़ाम से नीचे गिर गया स्कूटर उनका, तो मुझे लगा स्लिप कर गया होगा स्कूटर, तो मैंने साइड पे अपने मोटरसाइकिल रोकी, तो मैंने उनको उठाने की कोशिश की, तो बड़ी बदबू आई उनके मुंह से, तो मैं समझ गया कि इतना पी लिया इन्होंने, और दिन दहाड़े की बात है, करीब 4-5 बजे की बात, कुछ होश नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, और वो बार बार खड़े हो रहा है और बार बार नीचे गिर रहा है। मैंने उसको बोला 2 मिनट बैठ जाओ, अभी आप स्कूटर आपका साइड पे खड़ा कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही उसको, है ना, तो पैसा भी वेस्ट कर दिया, है ना, वो पैसा घर के लिए बच्चों के लिए यूज कर सकते थे, और पीते समय भी परेशानी है, कड़वी होती है एकदम, क्या मतलब पीने का कुछ फायदा नहीं है, और पीने के बाद परिणाम देख लो, और ये तो अच्छा हुआ कि कोई ट्रैफिक सामने से तेजी से नहीं आ रहा था, नहीं तो कोई नुकसान भी हो सकता था भारी, नहीं तो ये तमोगुण का सुख है, कोई बहुत बासी खाना खाना, सड़ा हुआ खाना खाना, मांस खाना, है ना, अभी जो साइंटिस्ट तो सारे अभी स्टडीज कर रहे हैं कि अगर मांस खाते हैं तो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है मांस, है ना, और मांस खाने से कैंसर और दुनिया भर के रोग हो रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो मांस है उसके अंदर जैसे सुअर है बकरा है, कोई हाइजीनिक थोड़ा रहते हैं वो, नहीं हम लोग तो हाइजीनिक रह रहे हैं, कितने साफ सफाई रखते हैं, लेकिन ये जो सुअर आपका बकरा वगैरह जो मुर्गा, ये कोई हाइजीनिक रहते हैं, बहुत ही गंदे परिवेश में रखते हैं, बिल्कुल कॉस्ट को एकदम कम रखने के लिए जितना कम से कम में गुजारा हो जाए वैसे रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है लोगों का मकसद, अब उसको हम मतलब खा रहे हैं उसको, तो उसके अंदर कितने जर्म्स होंगे, उसके अंदर कितने कीटाणु होंगे, कितनी बीमारियों से भरे होते हैं वो, और हम उसको खा लेंगे तो नेचुरली हमें कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा, कब तक हमारा शरीर लड़ता रहेगा उससे, मान लिया कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है लेकिन कब तक लड़ेगा उससे, कभी ना कभी तो इफेक्ट करेगा, नहीं सो कृष्णा ने एक्सप्लेन किया कि देखो सुख है इस संसार में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से प्रभावित है, लेकिन साथ में उसमें एक प्रॉब्लम और है कि चलो सुख तो है, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो स्थायी नहीं है सुख, अभी है अभी मिला अभी खत्म हो गया, है ना, लगातार वो सुख मिलता नहीं रहेगा, है ना, हमने कोई अच्छा खाना खाया तो वो थोड़ी देर सुख मिलेगा, वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता वो सुख, है ना, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है वो सुख, है ना, बल्कि जब हम खाना खा ही होते हैं तो जो टेस्ट हमें पहले कौर में आता है वो चौथे पांचवे में नहीं आता, नहीं सही है गलत है, सो परमानेंट सुख नहीं है, है ना, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है इस जो भौतिक जगत का सुख है कि जो क्वांटिटी है सुख की वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं, चलो थोड़े टाइम के लिए सही कम से कम पूरी तरह सेटिस्फाई तो हो जाएं, नहीं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाता व्यक्ति, है ना, तो पूरे टाइम के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहे, पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ये किस तरह का सुख है ना, ये उसी तरह का आप एग्जांपल ले सकते हो कि रेगिस्तान में हम बहुत देर से प्यासे घूम रहे हैं पानी की तलाश में, अचानक एक व्यक्ति आया ऊंट पे बैठ के और उसने बोला मेरे पास पानी है, हाँ फटाफट दे दो, तो उसने कहा चलो मुंह खोलो, मुंह खोला हमने, उसने हमारे जबान पर एक बूंद पानी टपका लिया, तो क्या पानी मिला, पानी मिला, क्या प्यास बुझी, प्यास नहीं बुझी, बल्कि हमारी प्यास और ज्यादा तेज हो गई, है ना, और ज्यादा तेज हो गई कि यार ये एक बूंद थी कुछ, मतलब एक बोतल मिल जाती, एक गिलास मिल जाता तो कुछ, मतलब मन को तसल्ली हो जाती, जीवन की रक्षा हो जाती, 10 तरह के चीजें दिमाग में आएंगी। और व्यक्ति सोचता यार इससे अच्छा तो पहले ही था, एक बूंद से ना इधर का रहा ना उधर का रहा, क्या फायदा हुआ, नहीं। तो जो एक बूंद के समान जो हमें सुख मिल रहा है वो हमारी प्यास को और अधिक बढ़ा रहा है, उसको घटा नहीं रहा, है ना। ये उसी के समान है कि हम लोग, हमें सुख की तलाश तो है, अब वो जो सुख की तलाश है वो समझो आग की तरह है, आग जल रही है ना। अब हम उसको, उस आग को शांत करना चाहते हैं, तो आग को शांत करने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर घी डाल दिया। आप लोगों ने कभी यज्ञ किया है, कभी वो जो स्वाहा करते हैं, है ना, उसमें जैसे अग्निकुंड में आग जल रही होती है ना, उसके ऊपर आप घी डालो जलती हुई आग पे, तो एक बार वो घी जो आग है वो दब जाती है। देखा है आप, अनुभव है, एक बार वो आग दब जाती है जब घी डालते हैं, लेकिन जैसे ही वो घी पिघलता है वो आग एकदम से तेज हो जाती है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी चीज विषयों का भोग करते हैं, हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अंदर, तो एक बार को कुछ क्षण के लिए शांत हो जाती है, एक दो दिन के लिए शांत हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमने गलत तरीके का उपयोग किया तो वो दोबारा से और भी तेजी से सिर उठा लेती है ना। तो हम अग्नि को बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन गलत प्रयास कर रहे हैं, हम ईंधन से आग को नहीं बुझा सकते। अगर आग में ईंधन फ्यूल डालेंगे तो आग और ज्यादा तेज हो जाएगी, टेम्पररी हो सकता है रिलीफ मिल जाए, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं होगा। आग बुझाने के लिए हमें उस पर पानी डालना पड़ेगा, एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो आग को ऑक्सीजन की सप्लाई काट दे, जिससे कि आग बुझ जाए, है ना। तो ये इस पॉइंट तक आने के लिए हमें भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यार, जो हम कर रहे हैं, जिस परिवेश में हम भी रह रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो अब क्वेश्चन है कि भगवत गीता को समझने की क्वालिफिकेशन क्या है, है ना। एक क्वालिफिकेशन की हमने बात की थी कि कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है, कि हमें ये फेथ होना चाहिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण भगवान है, ये हमें बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है। अन्यथा हम बोलेंगे कि यार कृष्ण ने ये बात बोली है, पता नहीं क्या सैंक्टिटी है, होगा या नहीं होगा, नहीं। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि मेरा जो धाम है वो परम धाम है, वहां जाके कोई वापस नहीं आता, है ना। तो हम सोच सकते हैं पता नहीं बात सही भी है नहीं सही है, है ना। तो अगर हमें डाउट है, संशय है, तो हम भगवत गीता को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। हम पढ़ तो लेंगे, हमें नॉलेज हो जाएगी, लेकिन हम उसको, नॉलेज होना और समझने में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की किताब कोई भी पढ़ सकता है, है ना, लेकिन क्या मेडिसिन की किताब पढ़ के हम किसी को दवाई दे सकते हैं? हम दवाई नहीं दे सकते। जब तक हम प्रॉपर उसको किसी की गाइडेंस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं उसको, और 2 साल 5 साल 10 साल तक जब तक हम उसकी अनुभव नहीं होगा हमें, तब तक हम किसी को ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह भगवत गीता पढ़ने मात्र से हम ये सोचें कि हम उसको समझ जाएंगे, वो पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। अगर हम किसी के मार्गदर्शन में जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, तब तक उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है ना। तब तक हमारी संपत्ति नहीं बनेगी। हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने 700 श्लोक पढ़ लिए, लेकिन वो 700 श्लोक के अंदर एक्चुअली में क्या है, भगवान का मंतव्य क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, उसको हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। यह फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। और क्या क्वालिफिकेशन है? और क्वालिफिकेशन ये है कि हमें ये एहसास हो जाना चाहिए, हमें हमारे दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि हम लोग अभी प्रॉब्लम में हैं। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं, तब तक हम उससे बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे नहीं, है ना। तो आप कह सकते हो कि आप तो बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हो कि मतलब हम प्रॉब्लम में, हमें पता ही नहीं है कि हम प्रॉब्लम में, ऐसा कैसे हो सकता है, हमको बेवकूफ थोड़े ना, नहीं प्रॉब्लम है तो दिखेगी ना, सही है गलत है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मतलब प्रॉब्लम है हम समझ नहीं पा रहे? तो अगर हम अपने भौतिक जीवन में भी देखें तो प्रॉब्लम दो तरह की होती है मोटे मोटे तौर पे, है ना। एक शरीर के प्रॉब्लम्स है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, है ना। शरीर की प्रॉब्लम तो समझ में आती है, घुटने में दर्द हो रही है जी, गला खराब है, है ना, आंखों से दिख नहीं रहा, चलो चश्मा लगा लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है, दिखाई दे रही है, लेकिन और हम समझ भी जाते हैं कि यार तकलीफ है कुछ, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ में आती है क्या? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। दूसरा व्यक्ति देख लेता है कि यार इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जिसको वो प्रॉब्लम होती है क्या वो उसको पता चल रहा होता है कि मुझे प्रॉब्लम है? बल्कि अगर उसको बोलो भाई तुझे ना ये प्रॉब्लम लग रही है, वो बोलते हैं मेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरा दिमाग खराब है, नहीं उल्टे और झगड़ा शुरू हो जाता है। आप किसी को बोल के देख लो कि यार तू पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, साइकाइट्रिस्ट के पास चला जा। वो कहेगा भैया एक तो तू मेरे पास दोबारा मत आई हो, और दूसरा तेरे को मैं लेके चलता हूँ साइकाइट्रिस्ट के पास, मेरा दिमाग नहीं खराब, तेरा दिमाग खराब। तो ये जो भौतिक जगत में हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ये एक्चुअली में शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, है ना। हमें है वो प्रॉब्लम, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को देख नहीं पा रहे हैं, हम ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वाकई में कुछ प्रॉब्लम है। क्यों जरूरी है ये समझना कि हम प्रॉब्लम में हैं? क्वेश्चन है ना, हम क्यों ये जाने कि हम प्रॉब्लम में हैं? ये जानना इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि जब तक हम ये रियलाइज नहीं कर लेंगे हम प्रॉब्लम में, हम इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इसकी दवाई लेने की कोशिश नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा, नहीं। सो अर्जुन को देख लो, अर्जुन जब लड़ाई करने गया था, लड़ाई के मैदान में जब गया था, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रहा हूं, वहां पे कोई ट्रॉफी बंटने वाली नहीं थी, है ना, वहां पे लड़ाई होने वाली थी, है? और अर्जुन सोच के गया था कि हाँ मुझे लड़ाई करनी है जाकर, है ना, और लड़ाई में सामने कौन कौन होगा वो भी अर्जुन को पता था, है ना? लेकिन जब अर्जुन वहां पे पहुंचा और जब उसने सिचुएशन को असेस किया, सिचुएशन के बारे में सोचा, तो उसको ये आइडिया होना शुरू हो गया कि यार कुछ मतलब बात जम नहीं रही, कुछ ठीक नहीं है बात, है ना। अपने गुरु पे बाण चलाना, अपने पिता समान लोगों पे, अपने फ्रेंड्स पे प्रहार करना, ये बात कुछ जम नहीं रही। और चलो मैंने प्रहार कर भी दिया तो दो नतीजे होंगे, या जीतूंगा या हारूंगा। तो अर्जुन ने कहा मैं हार गया तो हार तो बुरी है ही, लेकिन अगर मैं जीत भी गया, जीतने का मतलब है सामने वाले सारे मर जाएंगे और सामने वाले कौन है, सब मेरे सगे संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं सारे मेरे, नहीं तो अगर वो सारे मर गए तो सुख का भोग करूंगा किसके साथ में, नहीं। सपोज आपके पास में 1 करोड़ रुपए आप लॉटरी लग गई आपकी, तो अकेले थोड़े ना एंजॉय करोगे, चाहे रिश्तेदार कैसे ही हैं, चाहे जल रहे होंगे, चाहे कुछ भी है, लेकिन उनके साथ मिलके तो एंजॉय करोगे, अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ ही मिलके तो एंजॉय करोगे। वो नहीं है तो मतलब अकेले एंजॉय करना बड़ा मतलब इम्पॉसिबल है, अकेले एंजॉय करना नहीं। तो अर्जुन ने कहा मैं हार गया, हार गया मतलब मैं हारने का मतलब है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक लड़ाई चलती रहेगी, हारने का मतलब है मेरी मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई, सुख कैसे भोगूंगा। लेकिन अगर जीत गया तो सुख भोगूंगा किसके साथ, तो हार में तो हार है ही, जीत में भी हार है ना। तो अर्जुन ने कहा कि लड़ने का कुछ पॉइंट दिख नहीं रहा। अर्जुन ने अपना, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव है ना, अर्जुन ने गांडीव साइड पर रख दिया, यह नहीं चल रहा गांडीव है ना, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लड़ूंगा नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि चलो तुम नहीं लड़ोगे, तुम तो ये सोच रहे हो कि मैं दूसरों पे कैसे प्रहार करूं, कैसे मार दूं, लेकिन दूसरे तो ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ये सोच रहे हैं, नहीं। वो भीष्म पितामह वहां पे वो दूर खड़े हुए हैं, नहीं, और वो पीछे और करोड़ों सैनिक खड़े हुए हैं, तो उनको क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम मुझे क्या कह रहे हो। तो अगर तुम यहां से छोड़ के चले गए तो वो क्या बोलेंगे, कायर है, डर गया, नहीं, डर गया, पहले बहुत लड़ने के लिए आ रहा था, बहुत बेचैन हो रहे थे लड़ने के लिए, जब हमारी ताकत देखी तो भाग गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हारे पे कायर का टैग लग गया है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, दूसरी प्रॉब्लम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देखो अभी तो तुमने ये सोच लिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन तुम वो एक साइड पे बैठे हो गए, तुम्हारे पास संदेशा आएगा, युधिष्ठिर मरने वाला है, नकुल जो है उसकी बाजू कट गई, तो तुम क्या करोगे, वहां बैठे रहोगे। क्या करोगे तुम, तुम्हें उठ के आना ही पड़ेगा और लड़ाई में भाग लेना पड़ेगा, अपने भाइयों की, अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी, हथियार तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। तुम अभी कह रहे हो लेकिन तुम इसको कहते नहीं रह पाओगे, तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, गलत है नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं पूरी तरह से फंस गया हूं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये ऐसी प्रॉब्लम है इससे बाहर निकलने का मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं, चक्रव्यूह बना दो उसको मैं तोड़ दूंगा, मुझे बोलो मैं हवा को रोक सकता हूं अपने बाणों से। और अर्जुन के पास ये विद्या थी, वो अपने बाणों से हवा का रुख पलट सकता था, इतनी कौशल और इतनी शक्ति थी अर्जुन के पास में। लेकिन अर्जुन ने कहा कि बहुत कुछ मेरे पास में कुशलता, दक्षता, बहुत नॉलेज है मेरे पास में, लेकिन सब बेकार है, ये जो ये प्रॉब्लम है इससे मैं बाहर निकलने में असमर्थ हूं, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा इससे, तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट जाता हूं तो कुएं में गिर रहा हूं, लेफ्ट जा रहा हूं तो कुएं में गिर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। सो भाई स्विच ऑफ ये लाइट्स। बंद कर दो है ना, इससे मच्छर थोड़ा
लाइट थोड़ा कम करता हो।
सो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, अभी तक अर्जुन भगवान कृष्ण से ही बात कर रहा था, लेकिन अभी तक बात कर रहा था एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड बात कर रहा था कि देखो कृष्णा ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा करना चाहिए, अगर हम लड़ाई करेंगे इधर के भी लोग मर जाएंगे, उधर के भी लोग मर जाएंगे, तो बड़े बुजुर्ग अगर मर गए तो कौन बताएगा कि अगर घर के रीति रिवाज क्या हैं, है ना, जैसे आजकल हो रहा है ना, कोई पूछता ही नहीं बुजुर्गों को घर के रीति रिवाज क्या है, नहीं कोई नहीं पूछता, सब अपने मन मर्जी से चल रहे हैं सारे, नहीं। सो अर्जुन ने कहा कि अगर बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो घर के रीति रिवाज जो एक प्रथा चल रही है वो प्रथा जो है खत्म हो जाएगी, लोगों को घर के लोगों को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो और अगर बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो स्त्रियों पर कंट्रोल कौन करेगा, अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर का मतलब है ऐसे बच्चे जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या ऐसे वर्ण संकर बच्चे में दिख रहे हैं आजकल, सारे ही हैं किसी को धर्म से लेना देना कुछ नहीं है, अगर किसी से पूछो कि धर्म क्या है, किसी को धर्म की परिभाषा भी नहीं पता, लोग बोलेंगे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये कोई धर्म की परिभाषा थोड़ी है, है ना, धर्म की परिभाषा कुछ और है, है ना, धर्म की परिभाषा है कि किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण, किसी वस्तु में क्या गुण है, जैसे अग्नि का गुण क्या है, जलाना, है ना, अग्नि का गुण है तापमान, ऊर्जा, अग्नि का गुण है, अगर अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं है तो क्या हम बोलेंगे अग्नि है, है ना, तो अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का क्या धर्म है, तरलता, है ना, अगर तरलता है तो पानी नहीं है, पानी है, अगर तरलता नहीं है तो, अगर बर्फ को, अगर आप पानी को जमा दो तो बर्फ बन जाएगी, तो क्या आप बोल सकते हैं कि पानी है, क्योंकि उसमें तरलता का गुण नहीं रहा इसलिए अब वो पानी नहीं है, अब वो बर्फ बन गई, नहीं। तो धर्म का मतलब है किसी वस्तु का, किसी जीव का ऐसा गुण जिसके बगैर उसका अस्तित्व संभव नहीं है, है ना। अब जीव का धर्म क्या है उसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे, अभी हम इस टॉपिक पे रह रहे हैं कि भगवद गीता को समझने की योग्यता क्या है, है ना। सो अर्जुन ने भगवान, अर्जुन अभी तक भगवान कृष्ण से एज अ फ्रेंड बात कर रहा था क्योंकि दोनों फ्रेंड थे एक्चुअली में, है ना, लेकिन तब अर्जुन ने जब समझा कि कुछ बाहर निकलने का तरीका दिख नहीं रहा तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली और अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ और आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मुझे नॉलेज दीजिए जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं। तो भगवत गीता समझने की एक योग्यता है कि हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु के पास जाके हमें उनको बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए, प्लीज हमें बताइए कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, उन्होंने गुरु बना लिया, नहीं अभी तो भगवान कृष्ण सामने नहीं दिख रहे, अभी चलो विग्रह के रूप में है लेकिन हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते होंगे, नहीं, तो अभी हम भगवान कृष्ण की शरण कैसे हैं, तो भगवान कृष्ण की हम शरण ले सकते हैं, भगवान कृष्ण की शरण लेने का मतलब है कृष्ण और उनके प्रतिनिधियों की शरण लेना, तो कृष्ण के प्रतिनिधि को हम बोलते हैं गुरु, गुरु की क्या परिभाषा है, गुरु की क्या योग्यता है उसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। सो हमें एक गुरु के पास जाना पड़ेगा, हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि आप प्लीज बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, है ना। अगर हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम आनंद की खोज नहीं कर पाएंगे। जो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, अगर हमें आनंद चाहिए, अगर हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम प्रॉब्लम में हैं अभी, और इस प्रॉब्लम से हम अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकते, है ना। और हमें जब ये बात समझ में आ जाएगी तब हम एक गुरु की शरण लेंगे, और गुरु की शरण के माध्यम से हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ेंगे। हम गुरु से पूछेंगे कि आप प्लीज बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, है ना। तीसरी जो एक और योग्यता हम भगवत गीता को कैसे समझ सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं जिस प्रकार, अगर सपोज हमें, अब हमें ये समझ में आ गया कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक बीमारी है, है ना, तो हम डॉक्टर के पास चले गए, गुरु के पास चले गए, तो जो डॉक्टर है वो हमें तीन चीजें बोलता है। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, है ना, तो उससे हम तीन चीजें लेके आते हैं, नहीं, पहली चीज क्या है कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज हम उनसे क्या पूछ के आते हैं, क्या करना चाहिए, है ना, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं, परहेज, है ना, क्या खाओ और क्या नहीं खाओ, क्या करो और क्या नहीं करो, नहीं, और तीसरी चीज हम क्या उससे पूछ के आते हैं, कौन सी दवाई खाऊं, कोई और चौथी चीज भी पूछते हैं, यही तीन चीजें तो पूछते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं। सो जब हम गुरु के पास जाएंगे तो हम उनसे तीन चीजें पूछेंगे, है ना, कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, और मुझे क्या दवाई खानी चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, अभी तक आप समझ रहे हो ना बात, ओके। सो जब हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें बोलेगा, देखो आपको चार चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना, चार चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, हम जो गुरु बोलेगा कि देखो आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना, आपको मांस नहीं खाना चाहिए, आपको नशा नहीं करना चाहिए, और आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, तो गुरु बोलेगा ये चार चीजें मत करो, है ना। कोई इसमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, नशा नहीं करना, है ना, नशा मत करो, मांस मत खाओ, इलिसिट सेक्स व्यभिचार मत करो, और जुआ मत खेलो, है ना। इसमें से ज्यादातर चीजें तो हम लोग करते नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पूरी दुनिया बदल जाएगी हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। इलिसिट सेक्स व्यभिचार तो हम करते भी नहीं है, है ना, कम से कम हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो व्यभिचार का तो पॉइंट है ही नहीं, है ना, और मांस भी ज्यादातर लोग हम नहीं खाते हैं, है ना, जुआ भी हम लोग नहीं खेलते हैं, एक्सेप्ट अब थोड़ा सा शेयर मार्केट में लोग जाना शुरू हुए, तो शेयर मार्केट में आप कह सकते हो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जुए के समान है, है ना, तो जुआ भी आमतौर पे लोग नहीं खेलते हैं, है ना। सो इतना मुश्किल नहीं है इन चार चीजों का पालन करना, हम धीरे धीरे कोशिश करें तो हम सोच के इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया क्या नहीं करना चाहिए, अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। तो जो गुरु कहते हैं, गुरु बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको हरि नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, है ना, इसीलिए तो हम पूरे जोर से हम शोर मचाते हैं, जोर जोर से, है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो गुरु बोलेगा कि आप जब भी आपको मौका मिले, जितना भी मौका मिले, उतना आप हरि नाम, है ना, हरि नाम लेंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, है ना। और तीसरी चीज गुरु क्या बोलेगा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, समझ में आ गया, क्या खाएं। तो गुरु बोलेगा कि आप कृष्ण प्रसाद खाओ, है ना, सिंपल है। कृष्ण प्रसाद का मतलब है आपने जो भी बनाया भगवान को भोग लगाओ और ग्रहण कर लो। अब जब हम कोई चीज भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा भगवान को क्या भोग लगाया जा सकता है। और भगवान भगवत गीता में एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति, है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि आप मुझे मांस शराब इत्यादि आप मेरे को मदिरा नहीं दे सकते, आप मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे पत्ते तुलसी का पत्ता भोग लगाओ, है ना, फल दो फूल दो, ये आप मुझे ऑफर करो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन मुझे बदबूदार चीजें अच्छी नहीं लगती, तो प्याज लहसुन मेरे को मत खिलाओ। तो जब हम भगवान को प्याज लहसुन नहीं खिलाएंगे तो हमें भी उसको छोड़ना पड़ेगा प्याज लहसुन को, नहीं। सो अगर हम कुछ भी हमने बनाया, हमने भगवान को ऑफर किया, ऑफर करने का क्या तरीका है, भगवान के सामने एक प्लेट आप बोल दो कि ये प्लेट भगवान की है, इस प्लेट में हम नहीं यूज करेंगे इस प्लेट को, है ना। एक ऐसी प्लेट लगा दो, कोई बहुत फैंसी प्लेट नहीं हो, सिंपल प्लेट होगी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे जी मैं तो 24 कैरेट सोने की प्लेट भगवान की ला सकते हो, अच्छी बात है ना, लेकिन आप एक नॉर्मल स्टील की प्लास्टिक की कुछ भी प्लेट है, हाँ, कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। या आप बोलो कि हम तो अलग से प्लेट नहीं रख सकते, है ना, तो आप पत्तल ले आओ, वो पत्तल में आप भगवान को, कहने का मतलब है जिसमें आप खा रहे हो उसमें भगवान को भोग नहीं लगाओ, बेसिक पर्पज ये है ना। तो आप भगवान को एक प्लेट में जो भी आपने बनाया थोड़ा थोड़ा रख दो, हर एक में तुलसी का पत्ता डाल दो और भगवान के सामने रख के भगवान को प्रे करो कि हे कृष्णा प्लीज आप इसको ग्रहण कीजिए, बस बात खत्म हो गई, है ना। और फिर वहां खड़े मत रहो, साइड पे आ जाओ, भगवान को खाने दो, है ना, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, है ना। आप वापिस जाओ, आप बोलो अच्छा कृष्णा आपने ले लिया, क्या मैं इसको ग्रहण कर सकते हैं। आप वो प्लेट उठाओ और जो थोड़ा थोड़ा आपने उसमें रखा था उसको पतीले में मिला दो, जैसे सपोज आपने थोड़ी दाल रखी थी तो दाल वापस दाल के पतीले में डाल दो, आपने चावल थोड़े रखे थे वो चावल चावल के पतीले में डाल दो, बात खत्म हो गई, है ना। सब आपने परिवार वालों को खिला दो, एक दाना भी घटेगा नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, है ना। सो अगर हम क्या नहीं खाएं हमें क्लियर हो गया, क्या खाएं अगर हमें क्लियर है, और हम जो दवाई में हम भगवान का नाम ले हरि नाम ले, तो ये जो भौतिक संसार रूपी बहुत ही डरावनी जगह है इससे हम बाहर निकल सकते हैं बहुत ही सरलता से, और हम भगवत गीता को इन सारे काम करने से हमें भगवत गीता को समझने की शक्ति मिलेगी, है ना। कृष्ण जो है और कृष्ण से कृष्ण के मुख से निकली हुई एक एक वचन अधोक्षज है, अधोक्षज का मतलब दिव्य है, हम अपनी जड़ इंद्रियों से मन आंख नाक कान हम इसको समझ नहीं सकते, इसको समझने की शक्ति मिलेगी कृष्ण की कृपा से, और कृष्ण की कृपा हमें मिलेगी जब हम ये तीन चीजें करेंगे। हमें कुछ काम नहीं करने, हमें भगवान को भोग लगा के खाना है, और हम जब हरि नाम लेंगे, ये तीन काम करने से हमें कृष्ण शक्ति प्रदान करेंगे कि हम इसी दिमाग से इसी मन से इन्हीं आंखों से हम भगवान को देख भी पाएंगे और भगवान की बात को समझ भी पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।